बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे मिस्र में जारी बदमनी और सियासी बहरान के बारे में, तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, मिस्र में इनकलाब की सालगिरह के मौके पर शुरू होने वाली बदमनी, शोरिश और सियासी बहरान जारी है। अगरचे बलवे में किसी हद तक कमी आ गई है, लेकिन मुजाहरों और मुखालिफतों में कमी नहीं आई है। और आज भी काहिरा, इस्कंदरिया और पोर्ट सईद के बाज़ इलाकों में मुजाहरे होने और बाज़ जगहों पर पुलिस और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम की खबरें मिली हैं। मिस्र में 10 दिन से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों और शोरिश में तकरीबन 60 अफराद मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इस वक्त हुकूमत की मुखालिफत और लोगों को वरगलाने में नेशनल साल्वेशन फ्रंट सबसे आगे है, जिसके लीडर मोहम्मद अलबरादेई हैं और उन्हें अमर मूसा और हमदैन सबाही का तआवुन भी हासिल है, जो हुकूमत के सामने मुसलसल अपने मुतालिबात की फहरिस्त पेश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायजा लेंगे कि मिस्र में जारी हालिया हंगामों, बलवे और पुरतशद्दुद मुजाहरों का मुहर्रिक क्या है, हुकूमत मिस्र को दामनगीर हालिया बहरान की जड़ें कहां हैं और नेशनल साल्वेशन फ्रंट का असल हदफ क्या है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने दिल्ली स्टूडियो में दावत दी है हिंदुस्तान के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को। लंदन स्टूडियो से इस मुबाहसे में हिस्सा लेंगे बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर डॉक्टर ताहिर वास्ती, और टेलीफोन लाइन के जरिए इस मुजाकरे में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान के मुमताज कालम नवीस और सीनियर तजिया निगार इरशाद आरिफ को। लेकिन पहले इस ताल्लुक से हमारी रिपोर्ट मुलाहजा फरमाएं।
मिस्र के ऐवान सदर के अतराफ में मुजाहरीन और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ये झड़पें ऐसे वक्त में हुई हैं जब सदर मुर्सी ने कहा है कि वो पुलिस को खुसूसी अख्तियारात तफवीज कर सकते हैं। अस्पताल के जराए का कहना है कि जुमे और हफ्ते के दरमियान रात देर गए सदर मुर्सी की बरतरफी का मुतालबा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस ने 20 के करीब मुजाहरीन को गिरफ्तार भी किया। मिस्र की वजारत दाखिला ने बताया कि फायरिंग के नतीजे में 5 पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं। झड़पें जुमे के रोज उस वक्त शुरू हुई जब मुजाहरीन ने ऐवान सदर पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। मिस्र की सिक्योरिटी फोर्स ने सरकारी दफातर की जानिब जाने वाली तमाम सड़कों को कंक्रीट की रुकावट ने खड़ी करके बंद कर दिया है। झड़पों से कबल मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने कहा था कि पुलिस तशद्दुद से काम लेने वाले मुजाहरीन के साथ सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने हिजब इख्तलाफ की जमातों से भी अपील की थी कि वो अपने हामियों को मुजाहरे बंद करने और सरकारी दफातर के अतराफ से चले जाने की हिदायत दें। मिस्र के हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और सूरत हाल काबू से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। अपोजिशन और मुजाहरीन की जानिब से सदर मुर्सी की बरतरफी, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई और कौमी नजात हुकूमत की तश्कील जैसे नए मुतालबात सामने आए हैं। नेशनल सेल्वेशन फ्रंट ने, जिसमें मुतादित अपोजिशन जमातें शामिल हैं, धमकी दी है कि अगर कौमी नजात की हुकूमत तश्कील न दी गई तो सिविल नाफरमानी शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त एहतजाज की एक बड़ी वजह अवामुन्नास के मुतालबात के पूरे होने में ताखीर है, लेकिन ये भी तय है कि हालात इतने ज्यादा खराब होने का सबब वो सियासी गुरोह भी हैं जिन्हें इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिली, और इसी तरह कुछ ऐसे गुरोह भी सरगर्म अमल हैं जिनकी शनाख्त के बारे में मुतादित ख्यालात पेश किए जाते हैं। कुछ गुरोहों के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इंतहा पसंद सलफी हलकों से है जो मिस्र में कशीदगी फैला रहे हैं। कुछ गुरोह ऐसे भी हैं जिन्हें इसराइल और मगरबी ममालिक के इशारों पर काम करने वाले अनासिर से ताबीर किया जाता है। مصر میں جاری احتجاج اور مظاہروں کی سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ حالات ناراضیت اور لاقانونیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں اس حکومت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو انقلاب کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اور جمہوریت قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جائز اور جمہوری مطالبات کے ساتھ مظاہرے کرنے والے مصری عوام میں خاصی تعداد میں ایسے عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں نہ تو مصر سے کوئی دلچسپی ہے نہ مصری عوام سے، جنہیں نہ تو مصری عوام کے مطالبات سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی اس ملک میں جمہوریت کے قیام سے۔ یہ عناصر کچھ طاقتوں کے اشارے پر مصر میں انقلاب کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش میں ہیں اور ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں انتخابات نہیں ہونے دینا چاہتے کہ کہیں انتخابات کے نتیجے میں اسلام نواز پارٹیاں ایک بار پھر مضبوط پوزیشن میں نہ پہنچ جائیں۔ لہذا یہ موقع ہے مصری عوام اور قائدین کی دانشمندانہ اور مدبرانہ پالیسیوں اور کارروائیوں کا۔
جی ناظرین، مصر کے بارے میں ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ مصر اس وقت انتہائی نازک اور حساس مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس موقع پر مصر کی حکومت، مصر کے صدر اور ان کے رفقائے کار اور اسی کے ساتھ مصر کے عوام، ملک اور قوم کے ہمدرد جو اپوزیشن رہنما ہیں، ان سب کو انتہائی تدبر اور بصیرت سے کام لے کر ملک کو موجودہ مرحلے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں اس وقت بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار طاہر واسطے صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ واسطے صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام مہدی شرافت۔
واسطے صاحب، مصر کے حالات کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ صورتحال مصر کو کس طرف لے جا رہی ہے؟
یہ صورتحال یقیناً مہدی شرافت، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ انارکی کی طرف لے جائے گی۔ ملک اس وقت انتہائی نازک اور حساس دور سے گزر رہا ہے اور جیسا کہ مصر کی اپنی حکومتی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر ملک میں بدامنی کا یہی صورتحال رہی اور ملکی لیڈروں نے فہمی کا، عقل کا استعمال نہ کیا تو ملک انارکی کی طرف جائے گا اور کیوس پھیلے گا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے پروگرام کے ابتدائی میں فرمایا کہ اس کی بنیادی جڑیں کہیں اور موجود ہیں۔ اس کی بنیادی جڑیں سعودی عرب کی انتہا پسندی کی طرف مائل جماعتوں کا مصر میں عمل دخل ہے، اس کی جڑیں امریکہ میں ہیں، اس کی جڑیں اسرائیل کی ان لابیز میں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جمہوریت کو پنپتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہ حکومتیں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان جمہوریت کے نتیجے میں ایک مسلمان حکومت وجود میں آتی ہے، اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے اور اسلامی نشر و اشاعت کا سلسلہ پھیلتا ہے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ مسلمان ترقی کریں گے، اس ملک کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ جیسا کہ ایران میں اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس دور کے نسبت جب ڈکٹیٹرشپ تھی۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، دن بدن انڈیویجولز ترقی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے سعودی عرب والے کہ جس طرح کہ انہوں نے ایران کی جمہوریت پر حملہ کیا اور خود حملہ کیا اور حملہ کروایا صدام حسین سے، اسی طرح وہ مصر میں اب چونکہ جمہوریت آئی ہے وہ اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہی ان کا ریئیکشن تھا حماس کے بارے میں کہ جب حماس کی حکومت قائم ہوئی، چونکہ بنیادی طور پر امریکہ، سعودی عرب اور امریکی ہواری یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں، چونکہ جو ہی جمہوریت کی جڑیں مہدی شرافت کسی ملک میں مضبوط ہوں گی، مسلمان بیدار ہوں گے، اس کا ڈائریکٹ نقصان امریکہ، اسرائیل اور ویسٹ کے اوپر ہوگا اور ویسٹ کے مفادات پر زد پڑے گی۔ چونکہ جب مسلمان نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اسلام کی روشنی لوگوں کے دلوں میں پھیلے گی تو یقیناً لوگ زیادہ خوشحال ہوں گے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہی حاصل ہوگی کہ کیپٹلزم اور پولیٹیکل مفادات جو امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے حق میں ہیں، ان سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جمہوریت مخالف لوگ ہیں۔ یہ اب پاکستان نیشنل فرنٹ کا کہنا، یہ پاکستان کہہ رہا ہوں، نیشنل فرنٹ کی حکومت کا کہنا کہ نیشنل فرنٹ کی حکومت بنے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں، دو روزہ الیکشن ہوئے ہیں، شدید اس میں پارٹیوں نے زور و شور سے حصہ لیا ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں صدر مرسی جو ہیں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ उससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद रेफरेंडम हुआ है, इन तमाम जमहूरी तरीकों से जो हुकूमत वजूद में आई है, अब उस हुकूमत को काम करने देना चाहिए, देखना चाहिए कि अब यह हुकूमत क्या करती है। वो एक आईन को रेफरेंडम के जरिए बनाने में कामयाब हो गई है, अब कुछ वक्त देना चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म्स होंगी, फौज में रिफॉर्म्स होंगी और बेशुमार इदारों में रिफॉर्म्स होंगी। कोई मैजिक वैंड सदर मुर्सी अपने साथ लेके नहीं आए हैं सिवाय इस बात के कि उन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। तो अगर सदर मुर्सी को कुछ मौका दिया जाए और वो पुलिस रिफॉर्म्स करें, वो मुल्क के दूसरे इदारों में जो डिक्टेटरशिप की वजह से वहां पे परवान चढ़े, और वो लोग जो उन इलाकों में उन इदारों में काम करते हैं, अब जब उनमें रिफॉर्म्स की सदर मुर्सी को इजाजत दी जाए और कुछ वक्त दिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। और अपोजिशन जमातों को इंतजार करना चाहिए, उनको सदर मुर्सी को दौरे हुकूमत को जो है उस पर एतमाद का इजहार करना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए कि जमहूरियत पनपे, बजाय इसके कि जो लोग हार चुके हैं वो अब चंद लुच्चे लफंगों और ऐसे लोगों को वहां पे बिठा के, सदारती महल को आग लगा के, वजीर आजम की गाड़ी पे पथराव करके, दबाव दे के उन लोगों को हुकूमत में वापस लाया जाए जिनको अवाम ने अपने वोट से रिजेक्ट किया था, ये जमहूरियत की नफी है। और मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी नेशनल हुकूमत की जरूरत नहीं है, नेशनल कंसेंसस की जरूरत है कि हमारे मुल्क में जमहूरी अमल के नतीजे में जो हुकूमत, जो पार्लियामान और जो सदर वजूद में आया है, और जिस आइन को हमने इंतखाब किया है, उस आइन पर सदर मुर्सी को अमल दरामद करने का मौका देना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोग जिनको अवाम ने अपने वोट की ताकत से मुस्तरद किया उनको वापस हुकूमत में लाया जाए।
जी वास्ते साहब, क्या मौजूदा हालात को ऐसे सियासी बहरान से ताबीर किया जा सकता है कि जिससे खुद इनकलाब मिस्र के सबोताज हो जाने का खदशा हो?
यकीनन यकीनन मेरी शराफत, जैसा आपने फरमाया कि इनकलाब बुनियादी तौर पर डिक्टेटरशिप के खिलाफ आया था, इनकलाब बुनियादी तौर पर एक डिक्टेटर के हुकूमत के खिलाफ आया था। अगर इनकलाब के बाद जमहूरियत आती है और जमहूरी हुकूमत के नतीजे में एक पार्लियामान वजूद में आती है, एक आइन का इंतखाब होता है, एक सदर का इंतखाब होता है, और इस लड़ाई में, इस सिविल नाफरमानी में जो इन लोगों ने, मुखालिफों ने शुरू कर रखी है, इजाफा होता है और फौज वापस आ जाती है और फौज वापस आकर अपने किसी डिक्टेटर को वहां पर दोबारा मुसल्लत कर देती है, तो वो इनकलाब जिसके लिए इतने मिस्रियों ने कुर्बानी दी, जिसके लिए मिस्रियों ने इतने साल इंतजार किया, यकीनन उस इनकलाब पर धचका पड़ेगा और ये इनकलाब की मुखालफत होगी और ये उस इनकलाब को नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
जी वास्ती साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ इनकलाब मिस्र की सालगिरह के मौके पर मुखालिफिन की जानिब से मुजाहरों का और एहतजाजात का सिलसिला जारी था, कि इसी मौके पर मिस्र की अदालत आलिया ने पोर्ट सईद में जो वाकया हुआ था, दो फुटबॉल टीमों के दौरान जो तसादुम हुआ था, उस तसादुम से मुताल्लिक उसने फैसला सादिर कर दिया। इस फैसले ने जलती पर तेल का काम किया। वहां की जो अदलिया है उसका माजी अगर देखा जाए और मोहम्मद मुर्सी से उसकी जो चपकलिश गुज़श्ता दिनों चलती रही है, तो क्या ये समझा जा सकता है कि उसका जो फैसला है ये एक इत्तेफाकिया था या दानिश्ता तौर पर इस जलती पर तेल डाला गया है?
देखिए मेरी शराफत, ये जैसा आप फरमा रहे थे, जलती पे तेल डालने वाली ही बात है। इस मैच को हुए हुए 1 साल हो चुका था, इसकी प्रोसिक्यूशन एक अरसे से चल रही थी, और इस दौरान में अदलिया ने, ये पहली बार नहीं है कि मिस्र की जमहूरी मुंतखब हुकूमत पर हमला किया हो, इससे पहले उन्होंने पार्लियामान के मामले में भी सदर मुर्सी और वोट के खिलाफ फैसला किया, उससे पहले इलेक्शन के दौरान उन्होंने मुर्सी और इंतखाबात के खिलाफ फैसला किया, उसके बाद उन्होंने आइन के खिलाफ फैसला करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड करने की कोशिश की। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि इस बात को समझना चाहिए कि मिस्र में इस वक्त जो भी लोग ब्यूरोक्रेट्स वहां मौजूद हैं और जो भी लोग अदलिया में मौजूद हैं और जो इदारों के सरबराह वहां मौजूद हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो सदर मुर्सी के अपॉइंटेड हों, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने जमहूरी दौरे हुकूमत में अवाम को सर्व किया हो, अवाम को खिदमत की हो, ये वो लोग हैं जो डिक्टेटरशिप के वजह से और डिक्टेटरशिप ने के अपॉइंटेड है। अब डिक्टेटरशिप के अपॉइंटेड लोगों को जब अवामी राय को सामना करना पड़ता है तो वो बौखलाहट का इजहार करते हैं और वो इस बात से आसूदा नहीं होते कि उनके पुराने जो जो उनके पुराने लीडर हैं, जो उनके पुराने लोग हैं जिनसे जिनके साथ वो काम करने में अपने आप कंफर्ट फील करते थे, मिसाल के तौर पर डिक्टेटरशिप के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर जिनके जिनके मफादात अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के साथ अटैच हैं, जो किसी के जब वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं थे और अब जबकि उन्हें आवाम के वोट के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, आवाम उनसे सवाल कर सकते हैं, तो वो इस तर्ज हुकूमत के आदी नहीं हैं। और जब उनको इस तर्ज हुकूमत का सामना करना पड़ता है तो वो बौखलाहट से ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारी कुछ हरकतों से इनकलाब की नफी हो जाए, इनकलाब खत्म हो जाए और जमहूरी दौर वापस आ जाए तो हमारी वो तमाम कोई किसी को हमारे सामने सवाल करने की जरूरत ना हो और वो तमाम पर्क्स हमारे पास मौजूद रहें। तो ये फैसला यकीनन कुछ लेट हो सकता था, वो इस बात को समझ सकते थे कि इस बात इसका बड़ा शदीद रिएक्शन होगा। और अब मुखालफत ने ये भी मुखालफ हुकूमत मुखालफ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया मेहदी शराफत कि इसके नतीजे में जिन लोगों को गिरफ्तारियां हुई और जिन लोगों को सजा का मुतालबा हुआ ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने फुटबॉल के मैच के दौरान गड़बड़ की, ये वो लोग हैं जो हुकूमत मुखालिफ हैं और इस वजह से हुकूमत इनको सजाए मौत देना चाहती है। अब ये एक नई बात उन्होंने शुरू कर दी है जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे थे इस फैसले ने इस वक्त उन शोरश ज़दा इलाकों में जलती पे तेल छिड़कने का काम किया और ये फैसला कुछ अमन के बाद आ सकता था, लेकिन जानबूझकर मुल्क में ऐसी फिजा कायम की जा रही है कि इस जमहूरी हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़े और सदर मुर्सी को माजूल कर होना पड़े, या कम से कम वो लोग जिनको अवाम ने अपने वोट की ताकत से डिसमिस कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उनको किसी तरह से हुकूमत में वापस लाया जा सके।
जी वास्ते साहब, मिस्र में अगर देखा जाए तो जो बुनियादी इदारे हैं एक साल का अरसा गुजरने के बाद भी उनके दरमियान जरूरी हमाहंगी नहीं आ सकी है, हुकूमत, अदलिया और फौज, इस सूरत हाल के बारे में आपका तजिया क्या है?
देखिए मेहदी शराफत, इसमें तो टाइम लगेगा, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रहा था, आप देखिए कि अगर आप 16 या 17 जून को शायद इलेक्शन हुए थे सदारती और बड़े टफ इलेक्शन थे और देख लीजिए कि बड़ा शदीद मुकाबला हुआ, शायद 53% वोट जो हैं वो सदर मुर्सी को मिले, इनके मुखालिफ को 49% वोट मिले। उसके बाद मेरे ख्याल दिसंबर में जाकर सदारती इलेक्शन का जो है वो ऐलान किया कमीशन ने, उसके बाद जो है बहुत लंबा अरसा कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में गुजर गया, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो फिर मुखालफत का सामना करना पड़ा और उसमें कई हंगामे हुए, उसके बाद रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम के नतीजे में जो है अब आइन हमारे सामने आया है। और उससे पहले आज जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि पार्लियामान को उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की, उसको सस्पेंड करने की कोशिश की, उसके मेम्बरान को ख़त्म करने की कोशिश की। तो आप ये देखिए कि ये पूरा एक साल जो है अभी सिर्फ सदर मुर्सी को सेट होने में लगा है। तो अब जब वो सेट हो जाते, कुछ टाइम उनको मिल जाता, आइन जो है उसके तहत इदारे काम करना शुरू कर देते, सदर मुर्सी उन तमाम लोगों को जो इनकलाब से वाबस्ता हैं, जो जमहूरियत से वाबस्ता हैं या जमहूरी पसंद जो अनासिर हैं उनको इंस्टॉल कर देते, उनको वो ले आते ऊपर उन इदारों में काम करने, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आप फरमा रहे हैं, एक मेरा ख्याल है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरूर तब्दीली की, लेकिन बाकी तब्दीलियां अभी मुमकिन में नहीं आई हैं। तो जब तक ये तब्दीलियां वजूद में ना आ जाएं और सदर मुर्सी को कुछ काम करने का मौका ना दिया जाए और लोग ये देख ना लें कि एक इस्लामी हुकूमत और वो हुकूमत और वो निज़ाम जो इस्लामी कवायद और असूल पर मबनी होता है किस तरह से लोगों को मफाद पहुंचाता है, किस तरह से लोगों को उससे फायदा हासिल हो सकता है और किस तरह से वो उसी मुल्क में बसने वाले ईसाइयों, उस मुल्क में बसने वाले गैर मुसलमानों को भी उसी तरह फायदा पहुंचाएगा जिस तरह के वो मुसलमानों को फायदा पहुंचाता है, वो लिबरल्स का भी उसी तरह ख्याल रखेगा जिस तरह से वो गैर लिबरल्स का, जिनको वो कहते हैं, उनका ख्याल रखेगा। जब आप हुकूमत को काम करना देंगे और मिस्र में तमाम लोगों को वो बुनियादी शहरी हकूक हासिल हो जाएंगे और इस्लामी असूलों के मुताबिक लोगों को तर्ज जिंदगी इख्तियार करने का मौका मिल जाएगा तो शायद सूरत हाल बदल जाए, लेकिन इस वक्त तक चूंकि टाइम नहीं था, इतने सारे वाकयात हुए हैं और अभी अभी आइन जो है उस रेफरेंडम के जरिए वो वजूद में आया है, तो अभी कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम के बाद जब यह हम आहंगी पैदा होगी तो शायद ये शोरश खत्म हो जाए। लेकिन जो मुखालफीन हैं वो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस शोरश से कम अज कम ये फायदा हो कि जिन लोगों को आवाम ने अपने वोट की ताकत से रिजेक्ट कर दिया था उनको वापस हम किसी न किसी तरीके से हुकूमत में ले आएं, और इसराइल, अमेरिका और सऊदी हुकूमत और सऊदी इंतहा पसंदों की किसी तरह से पुष्टपनाही हो सके और उनके मफादात को जद न लगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब। और नाज़रीन, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के मुमताज़ दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मिस्र के मौजूदा बुहरान के बारे में आपकी राय क्या है? इस
वालेकुम
बुहरान
अस्सलाम
की,
जनाब।
मिस्र के मौजूदा बुहरान की जड़ें कहां हैं जनाब?
देखिए, मिस्र में जो बोहरान अभी ताहाल दिखाई दे रहा है,
जी
मेरे नुक्ते नजर से ये कोई अचंभे की, कोई ताज्जुब की बात नहीं है।
जी
इसके पूरे आसार मुमकिन थे और उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं आज सुबह भी एक और मीडिया चैनल को बता रहा था कि ईरान में जो इनकलाब आया था वो इनकलाब इस्लामी इनकलाब था, वो मुस्लिम इनकलाब नहीं था।
जी
दुनिया को जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का और सोशलिज्म का जो सबक पढ़ाया जाता है वो दरअसल इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए पढ़ाया जाता है। मसला जमहूरियत नहीं है, मसला है कि इस्लामी फिक्र हुकूमत में गालिब ना आए। इस मुल्क, इस दुनिया के जो इस्तेमार पसंद और सहूनी कुवतें हैं वो हमेशा इस्लाम से खौफजदा रही हैं, और अगर इस्लाम कहीं गालिब आता हुआ दिखाई देगा तो यकीनी तौर पर उसकी मुखालफत की जाएगी। ईरान के साथ इराक की जो जंग 10 साल चली उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं थी। अगर मामूली तौर पर हुकूमत का बदलना मकसद होता तो यकीनन उस इनकलाब की मुखालफत न की जाती, लेकिन इस्लाम बरसर इकतदार आ रहा था इसलिए उसकी मुखालफत हुई। यही कुछ अब मिस्र में हो रहा है। इख्वान पसंद चूंकि एक मखसूस इस्लामी फिक्र से उस हुकूमत का ताल्लुक है, तो वहां के जो लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल्स और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को तो यकीनी तौर पर इस्लाम को पसंद करना नहीं है, और वो तमाम इस्तेमारी और सहूनी कुवतें जो ये जानती हैं कि इस्लाम अगर गालिब आया तो फिर उन ताकतों का किला कुमा हो जाएगा, वो किसी सूरत में उसे पसंद नहीं करेंगी। लिहाजा वहां जितने वो लीडर जो इंतखाबात में अवाम से शिकस्त खा चुके और जो अमरीकी ख्वाहिशों के आईनादारी और पासदारी वहां कर सकते हैं, उनको ये मौका बाकायदा तौर पर दिया जा रहा है कि वो मिस्र के मौजूदा हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए तमाम तरीके अपनाएं। अब भले ही उसकी तादाद कम हो, भले ही उसमें उन मुजाहरों में वो शिद्दत ना हो जो तहरीर स्क्वायर के वक्त में इनकलाब मिस्र के शुरू में थी, अब वो मुख्तसर से लोग हैं, लेकिन मीडिया पब्लिसिटी के जरिए सारी दुनिया को ये बताया जाएगा कि मिस्र में जो इनकलाब आया, मिस्र में जो अवामी हुकूमत कायम है, जमहूरी हुकूमत में नहीं कह रहा, जमहूरी तो अपने आप होगी ही वो, लेकिन जो अवामी ख्वाहिशात के आईनादार एक हुकूमत कायम की हुई है उसे बदनाम करने के लिए कुछ वाकयात पैदा करने हैं अमरीका को और इसराइल को, वो वहां किए जा रहे हैं। और ये जाहिर है कि मिस्र जो एक बहुत बड़ी अरब कुव्वत है जुग्राफियाई तौर पर, एक मरतब एक साइड वो अरब के तमाम ममलिकतों के साथ मिलती है, अहम तरीन ममलिकतों के साथ, दूसरी तरफ अफ्रीका की बहुत अहम ममलिकतों के साथ मिलती है, जो इंडो जो अरब एफ्रो अरब खित्ते का के लीडर की हैसियत से रहा है, उसको अगर इस्लाम की ताकत के साथ वो खड़ा होता है तो उसके पड़ोस में जो इसराइल वाबस्ता है, जो एक गासिब हुकूमत है, जो एक नाजायज हुकूमत है, जो एक जालिम हुकूमत है, जाहिर है कि उसके इस्तेहकाम को खित्ते में इसराइल के इस्तेहकाम को खतरा पैदा हो जाएगा। जाहिर है कि इस खतरे को बर्दाश्त करने की गुंजाइश ना अमरीका के पास है और ना खुद इसराइल के पास है। तो ये दोनों लोगों की एक कोशिश मुस्तकिल रहेगी कि एक तरफ वो इसराइल मिस्र की इस इस्लामी हुकूमत को और इस अवामी हुकूमत को नाकाम साबित करे, दूसरी तरफ वो तमाम ममालिक भी जो किसी ना किसी तौर पर मिस्र की इस हुकूमत के कयाम के हामी रहे हैं, खुसूसन ईरान, उन सबको ये यकजा करके बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि हुकूमत अवाम ने बनाई है, हुकूमत में जो शख्स बैठा है वो अवामी नुमाइंदा है, वो कोई फौजी डिक्टेटर नहीं है, उसने हथियारों के जरिए हुकूमत हासिल नहीं की है, उसने बुलेट से नहीं बैलेट से हुकूमत हासिल की है। इसलिए उसके अवाम समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं इब्तदाई तौर पर वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए उन मुजाहिरों में भी कोई शिद्दत पैदा नहीं हो पा रही जो उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। अब जाहिर है कि पोर्ट सईद में जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, मैं समझता हूं कि वहां के रहने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक जो सो कॉल्ड तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव ममालिक हैं, जिनके यहां जमहूरियत और सेकुलरिज्म टाइप की चीजें होती हैं, या मैं जिसे मुख्तसर एक लफ्ज में कहूं कि वो ममालिक जो दुनिया की इकोनॉमिक फोर्सेस के जरिए गवर्न होते हैं, उन ममालिक के लिए यह हो सकता है कि यह कोई नई चीज हो, लेकिन जिन लोगों ने खलफिशार और भगदड़ पैदा करके सैकड़ों लोगों को के कत्ल के जो मुर्तकिब हो गए हों, अगर उनको फांसी की सजा दी जाए तो ये कोई हैरत की बात इस्लामी दुनिया में पहले भी कभी नहीं थी, आज भी नहीं है। उसको बहाना बनाना उजरे लंग के सिवा कुछ नहीं हो सकता मौजूदा खलफिशार के लिए। और ये बात सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है, और ये बात जानते हैं सब लोग कि मिस्र में आने वाले इंकलाब के बाद, ट्यूनिस में आने वाले इंकलाब के बाद, लीबिया के इंकलाब के बाद जो इस्लामी बेदारी पैदा हुई है चारों तरफ पूरे पूरे के पूरे मगरबी एशिया में खसूसन, वो खतरे की घंटी बन गया है। उसने आइसोलेट कर दिया इसराइल को, और उसके बाद ही ये मुमकिन हो सका है कि यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेटस देने के लिए 138 ममालिक ने एक साथ खड़े होकर वोट किया, और उसने खतरा लाहक कर दिया इसराइल के वजूद को और इसराइल के हुकूमत को, और उस परेशानी उस बेचैनी में मुब्तला होकर इन तमाम हुकूमतों को, ट्यूनिस में भी यही किया जा रहा है, मिस्र में भी यही किया जा रहा है कि उसे खाना जंगी का नाम दे के उसे बदनाम करने की कोशिश की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए गोया कि हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर कालम नवीस और मुमताज तजिया निगार इरशाद आरिफ साहब से। इरशाद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी
जनाब, मिस्र के मौजूदा बहरान में बैरूनी मुदाखलत कितनी मुअस्सर है?
इसमें तो कोई शक नहीं है, मिस्र तो एक अड्डा रहा है, जिस तरह किसी दौर में शाह के दौर में ईरान अड्डा था अमरीकी फाजियों का, अब पाकिस्तान बना हुआ है, तो हुस्नी मुबारक के दौर में, उससे पहले सादात के दौर में ये एक अड्डा था अमरीकियों का, इसलिए अमरीकियों के मफादात भी वहाँ मजरूह हुए हैं और इसराइल को भी एक लिहाज से खतरा लायक हुआ है, क्योंकि पहली दफा आलम अरब में ऐसी हुकूमत आई है जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, जो जदोजहद के जरिए आई है, जिनकी एक तवील जदोजहद है और जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, और जो फैसले बाहर से इम्पोज करने की मुखालफत कर रही है और अपने फैसले खुद करना चाहती है, तो जाहिर बात है इसके खिलाफ इसराइल भी होगा, उसके सरपरस्त यूरोपीय ममालिक भी होंगे और सबसे ज्यादा अमरीका होगा, और वो है। और ये जो खलफशार नजर आता है ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, मामूल की चीज है। जाहिर बात है जिन कुतों को शिकस्त हुई है, जो अब भी मौजूद हैं, फौज में मौजूद हैं, सिविलियन में मौजूद हैं, सियासी जमातों में मौजूद हैं, वो तो जाहिर है इब्तदाई में इस निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी, इब्तदाई में कोशिश करेंगी कि ये बदनाम भी हो जाए और नाकाम भी हो जाए। तो इसमें बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी सरपरस्ती कोई खारिज अज इम्कान बात नहीं है, हर जी शऊर को फौरी समझ आ जाती है कि कौन कौन सी कुव्वतें इस खलफशार को या इंतशार को जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुजाहरे की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में, कहाँ कहाँ से तकबीयत मिल रही है। तो ये बिल्कुल अयां बात है और एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उन अनासर को उकसाया जा रहा है जिनके इख्तलाफात हैं इख़वान मुस्लिम से, या जो मौजूदा सदर मुर्सी हैं, या वो कुव्वतें जिन्होंने जदोजहद की हुस्नी मुबारक के खिलाफ और इंतखाबात के जरिए कामयाब हासिल की। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, अमरीका को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि जहां जहां मुसलमान जमहूरियत के जरिए इंतखाबी निज़ाम के लिए इकदार में आते हैं तो ये उसकी भी मुखालफत करता है, और फिर मुसलमानों को मायूसी की तरफ धकेलता है कि वो फिर उस तरफ जाएं जिसको ये दहशतगर्दी करार देता है। तो अगर इस वक्त जबकि ट्यूनिस में और लीबिया में और यानी जो ट्यूनिस में और मिस्र में जो हुकूमत कायम हो चुकी है, लीबिया में कोशिश हो रही है, अगर वहाँ خاص عمل کے سامنے آنے والوں کو، افطار میں آنے والوں کو بھی امریکہ اور اس کے حوالے برداشت نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ ممکن نہیں ہے جس طرح اس نے 30 سال کوشش کر کے دیکھ لی، بلکہ 33 سال اب ہو گئے کہ ایران میں وہ ریورس کر سکے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ مصر میں حالات ریورس ہو جائیں اور پھر کوئی حسنی مبارک کا جانشین آ جائے. وہ تو اب امریکہ کو اور اس کے ایلائز کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہاں تبدیلی آ چکی ہے، وہاں عوام اپنے فیصلوں میں آزاد ہو چکے ہیں اور عوام کی منتخب حکومت قائم ہو چکی ہے. اب اس کے ساتھ بقائے باہم کی بنیاد پر تعلقات بنانے چاہیے، نہ یہ کہ اس کو کس طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش کی جائے، سازشوں کے ذریعے، بدامنی کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، کیونکہ یہ ہر بات چلنے والا نہیں ہے.
جی ارشاد عارف صاحب، مصر کے نیشنل سالویشن فرنٹ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، جس کے سربراہ محمد البرادعی صاحب ہیں؟
دیکھیے، محمد البرادعی کا جو آئی اے میں کردار ہے وہ کسی سے بخشی نہیں ہے.
جی
وہاں بھی ان کا دورہ کردار رہا، وہ ہمیشہ ایران کو پاکستان کو نشانہ بناتا رہا، ایران خاص طور پر جو ایرانی ایٹمی پروگرام تھا اس حوالے سے ان کا وہ ایک کردار رہا. اور مصر میں کوشش یہ تھی امریکہ کی، یورپ کی، نظر آتا تھا کہ محمد البرادعی کو بطور صدر یا وزیر اعظم لایا جائے گا، لیکن وہ ناکام ہو گئے. تو اب ظاہر بات ہے ان یہ محمد البرادعی کے بارے میں کوئی بھی اس کو شرمندگی کا شکار، وہ نیشنلسٹ ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، لیکن وہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں جو ناکام ہوا ہے وہاں، اور وہ چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹاؤٹ ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہ فرنٹ جو کردار ادا کر رہا ہے وہ مصری عوام کے حق میں نہیں ہے، یا مصری عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقتاً یورپی اور امریکی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں. ایک حکومت جس کو ابھی قائم ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، ابھی سے اگر اس کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے، اس کے خلاف تشدد آمیز کاروائیاں شروع ہو جائیں گی، احتجاج شروع ہو جائے گا، تو وہ اپنے ایجنڈے کو کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچا سکے گی؟ اور وہ جو حالات بگڑ چکے ہیں اس مبارک میں اور اس کے جو پیش ہوتے ہیں انہیں بگاڑے ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے کچھ وقت بھی تو منتخب حکومت کو چاہیے. اگر یہ نہیں کہنا چاہتے اور یہ مسلسل احتجاج ہنگامے کے ذریعے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ان کے عزائم درست نہیں ہیں اور یہ کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، بہت بہت شکریہ. تسلیم رحمانی صاحب، مصر کے نیشنل سالویشن فرنٹ کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس کو لیڈ کر رہے ہیں محمد البرادعی صاحب، جو ایک لمبے عرصے تک مصر سے باہر رہے ہیں، آئی اے ای اے کے چیف رہ چکے ہیں، اور ان کو حمایت حاصل ہے، یعنی اس فرنٹ میں ان کے بازو بنے ہوئے ہیں عمر موسیٰ صاحب اور ہمدین صباحی صاحب. یہ دونوں صاحبان آخر وقت تک عامر حکومت سے وابستہ رہے ہیں.
جی دیکھیے، البرادعی صاحب ہوں یا عمر موسیٰ صاحب ہوں، دونوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ امریکی مفادات کی براری کے لیے ایک لمبے عرصے تک کام کر چکے ہیں، ان کی زندگیاں گزری ہیں امریکہ براری کے معاملے کو لے کر. آئی اے ای اے میں بھی اتنے لمبے عرصے تک البرادعی نے کام کیا، اور آئی اے ای اے کا جو رول ہے دنیا کے ایٹامک انرجی کے معاملات میں وہ مکمل طور پر امریکہ نواز ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز امریکہ کے گھر کی لانڈی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا آج کے زمانے میں، اور البرادعی صاحب ان سے بھی وابستہ رہے، عمر موسیٰ صاحب کی بھی وہی وابستگی رہی ہے. اور جس وقت یہ مصر میں انقلاب کا آغاز ہو گیا اور تحریر اسکوائر پہ لاکھوں لوگ آ کے اکٹھے ہو گئے، اس کے ایک ہفتے 10 دن کے بعد یہ البرادعی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں جاؤں گا اب مصر اور مصر میں ہم لیڈ کریں گے اس انقلاب کو. لیکن عوام نے البرادعی صاحب کو لیڈ کرنے سے اس وقت بھی روک دیا تھا، یہ بات سب کے ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے. تو آج اگر البرادعی صاحب اور عمر موسیٰ صاحب اسی انقلاب مصر کو، جس کی خاطر وہ امریکہ کے اشارے پر وہاں پہنچے تھے، تو ظاہر ہے کہ ڈسٹرب کرنے کا کام انہی کی قیادت میں کیا جائے گا. اور ان کی سیلویشن فورس کا اور عمر موسیٰ صاحب کا وہاں موجود رہ کر مصر کی عوامی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنا اپنے آپ میں یہ دلیل ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. اگر البردائی اور ابربوسا کے علاوہ کچھ اور لیڈر مصر کے کھڑے ہوئے ہوتے اس سرکار کے خلاف تو یہ شاید سوچا جاتا تھوڑی دیر کے لیے کہ ممکن ہے کہ کچھ مقامی فورسز ہوں جو حکومت کے خلاف ہوں اور وہ مظاہرے کر رہی ہوں. لیکن البردائی صاحب کا سامنے ہونا, ابربوسا صاحب کا سامنے ہونا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مصر کی عوامی اسلامی سرکار کو ناکام کرنے کی کوشش کسی مصری کی جانب سے نہیں ہو رہی, مصر کے عوام کی جانب سے نہیں ہو رہی, بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے ان اہلکاروں کی جانب سے ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر صرف ان کی مفاد براری میں صرف کی ہے. تو یہ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. اور ساری دنیا میں جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا خدشہ پہلے بھی تھا اور آج وہ بات ثابت ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے حلیف مصر کو چین سے بیٹھے رہنا نہیں چاہتے. وہ لوگ جو ساری دنیا میں جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, جب وہاں اسلامی خطوط پر کہیں بھی جمہوریت قائم ہوتی ہے تو وہی لوگ جمہوریت کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر سامنے آتے ہیں. 2006 میں حماس نے عوامی ووٹ کے ذریعے سے وہاں پر ایک حکومت بنائی تھی اور ساری دنیا جانتی ہے کہ فوراً ہی انہی امریکی لابیز نے اور استعماری لابیز نے ایک عوام کے ذریعے چنی گئی سرکار اس الیکشن کو سیٹ اسائڈ کیا, نل اینڈ وائٹ کیا اور حماس کو جو ایک جمہوری قوت تھا اسے ٹیررسٹ قرار دیا تھا. اور اس کے فوراً بعد 2007 میں اسی حماس کی زیر اثر غزہ کے علاقے میں محاصرہ کر کے وہاں کے 15 لاکھ لوگوں کو جس طریقے سے غیر انسانی طریقے سے وہاں پر زدوکوب کیا گیا اور آج تک جو سلسلہ جاری ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ جمہوریت کی دعائی دیتے ہیں, جو دنیا میں سب سے بڑا علمبردار خود کو جمہوریت کا کہتے ہیں, وہ کتنے بڑے غیر جمہوری ہیں اور کتنے بڑے بے انصاف اور بے ایمان لوگ ہیں جو عوامی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ جمہوریت کو اپنی خواہش کے مطابق اپنے مفاد کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. ان کا انسانیت سے لینا دینا نہیں ہے بلکہ ان کا اپنے دولت سے اور اپنے اقتدار کی حوث سے زیادہ پیار ہے اور اس لیے وہ سچ کو سچ کی صورت میں دنیا کے سامنے آنے دینا نہیں چاہتے. البردائی جیسے لوگ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری مملکتیں اور ان کے سربراہان بھی اس طرح کے موجود ہیں.
رحمانی صاحب ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں,
امریکہ کی ان پالیسیز کو پسند کرتے ہیں اور وہ خود بھی چونکہ غاصب ہے ٹریٹر ہے تو ظاہر ہے وہ حلیف بن جاتے ہیں امریکہ کے اور اس وہ ان کو پھر مصر جیسی سرکاریں اور ٹیونس جیسی سرکاریں اور ایران جیسی سرکاریں راس نہیں آتی. ان کو اسلام سے ڈر لگتا ہے, اسلاموفوبیا غالب ہے تمام لوگوں کے اوپر اور اس سے اسلام کو مٹانے کے لیے تاکہ انسانیت کو جو چیزیں جس ضرورت ہے جس انصاف کی اسے ختم کرنے کے لیے یہ لوگ محض یہ چاہتے ہیں کہ
دیکھیے جو
اقتدار قائم رہے.
امریکہ سے وابستہ جو حلقے ہیں, سہونیوں سے وابستہ جو لیڈران ہیں اور سیکولر لبرل مذہب مخالف جو حلقے ہیں ان کی جانب سے جو مخالفت ہو رہی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن بعض مذہبی جماعتوں نے مظاہروں کی کال دی ہے اور محمد مرسی کی مخالفت کا اعلان کیا ہے, اس صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ انتہا پسند مذہبی جماعتوں نے بھی محمد مرسی کی مخالفت کا اعلان کیا.
جی ہاں, میں میرا اشارہ اصل میں انہی انتہا پسند حکومتوں کی جانب سے تھا. میں نے جو عرض کیا کہ کچھ مملکتیں جن میں ہمارے جو شہنشاہ ہیں بہت ساری مملکتوں کے, ان کو بھی اسلام کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کا اقتدار قائم رہے, ان کی شہنشاہیتیں قائم رہیں تاکہ وہ عوام کو لوٹتے رہیں. اس وقت خلیجی ممالک میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خلیجی ممالک میں اسلام سے دور عوام کو کر دیا گیا, ان کو صرف دولت کا نشہ دیا گیا ہے کہ وہ دولت کماتے رہیں اور اسلام سے بے پرواہ ہو کے اپنی زندگیاں گزاریں. یہ بات وہ مملکتیں چاہتی ہیں, اسی لیے بڑی وجہ ہے کہ مصر کے خلاف قطر اور کویت میں جو تحریک چلی ہے, جو ہزاروں مصریوں کو وہاں سے نکالا گیا اور اخوان کا نام لے کے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام अगर अखबार को पसंद कर रहे हैं और अखबार एक नजरिया है, एक दीनी नजरिया है जो सैकड़ों साल पुराना नजरिया है, तो आखिर उसको इस्लाम दुश्मन कैसे समझा जा सकता है? और वो सरकारें जो खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा कहती हों, जो इस्लाम का नुमाइंदा कहती हों, वो इख्वान के कत्लेआम के मुर्तकिब कैसे हो सकते हैं और वो मिस्र के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर मकसद सिर्फ इख्तदार हो और अगर मकसद सिर्फ अमरीका की गुलामी हो, तो यकीनी तौर पर उन सरकारों का दुश्मन मिस्र भी होगा और उनका दुश्मन ईरान भी होगा और उनका दुश्मन ट्यूनीसिया भी होगा। दुनिया भर के अवाम को यह बात समझनी चाहिए कि इस वक्त इस्लाम बरसरे पेकार है गैर इस्लाम के साथ, और मुसलमान नाम के बहुत सारी कुवतें जिनके नाम मुसलमानों जैसे हैं, वो इस्लाम के उसी इस्लामी खेमे के मुखालिफ होके इस्तेमारी खेमे के हलीफ बन चुके हैं। इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी मुसलमान के जहन में सारी दुनिया में। ये बात अब बिल्कुल वाजे हो गई कि जो लोग इस्लाम के साथ हैं वो मिस्र के साथ भी होंगे और ईरान के साथ भी होंगे, और जो लोग इस्लाम के मुखालिफ हैं वो हर उस लॉबी के साथ होंगे, वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, जो मिस्र और ईरान के मुखालिफ हैं। तो जिस तरीके से एक मरतबा अमरीकी सदर ने कहा था कि आपको तय करना होगा कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, अगर हमारे साथ नहीं है तो आप दुश्मन है, इसी तरीके से आज ये बात मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए कि जो आज मिस्र और ईरान के साथ है वो इस्लाम पसंद है, और जो मिस्र और ईरान का मुखालिफ है वो इस्लाम पसंद नहीं हो सकता, वो इस्लाम के निशाते सानिया का दुश्मन करार दिया जाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें दो राय नहीं कि मिस्र की मौजूदा हुकूमत एक बहुत ही सख्त इम्तिहान के दौर से गुजर रही है, और इन हालात में उसको वाकई इंतहाई तदब्बुर से काम लेने की ज़रूरत है, और उसके सामने एक जो बड़ा चैलेंज है वो मिस्र में सरगर्म जो इंतहा पसंद मजहबी जमातें हैं वो उसके लिए मुश्किल साज हैं। वरना नेशनल साल्वेशन फ्रंट का जहां तक सवाल है तो उसकी हकीकत सब पर आया है। एक तो खुद मोहम्मद अल बरादेई साहब का किरदार भी मशकूक है, और इसके साथ अम्र मूसा और हमदैन सबाही जैसी शख्सियतें जो उनके साथ मौजूद हैं, वो और सोने पर सिहागा, उन्होंने जो अपने मुतालबात पेश किए हैं उन्होंने वाजे कर दिया है कि वो मौजूदा बहरान से निकलना और मुल्क को निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि बहरान को पेचीदा तर कर देना चाहते हैं। चुनांचे उनके मुतालबात में सदर मोहम्मद मुरसी की बरतरफी, उन पर मुकदमा चलाया जाना, कौमी वफाक की हुकूमत का क्याम, आइन को कलअदम करार दिया जाना, ये तमाम बातें उनके मुतालबात में शामिल हैं जो आवाम के फैसलों के खिलाफ हैं। बहरहाल प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir, और इसी के साथ हम डॉक्टर ताहिर वास्ती और इशाद आरिफ साहब से माजरत खां हैं कि हमारा वक्त चूंकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए उनसे मजीद हम सवाल नहीं कर सकते हैं, और इसी के साथ इन हजरात और डॉक्टर तस्लीम रहमानी के शुक्रगुजार हैं। अब हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।